नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में भारत का अनाज उत्पादन 10 करोड़ टन बढ़ा। मन की बात कार्यक्रम में लोगों से वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाने का किया आह्वान। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार ने संभाला पदभार। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में रिपीट करने को बताया प्राथमिकता। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, धर्मशाला में 4 दिसंबर को होगा प्रदर्शन, राज्य सरकार की नाकामियों को करेंगे उजागर। और चंबा के चौगान मैदान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने नशे के खात्मे के लिए संस्कार युक्त शिक्षा पर दिया बल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के कई घटनाक्रम भारत की नई सोच, नवाचार और युवा शक्ति को दर्शाते हैं। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये महीना कई प्रेरणाएं लेकर आया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर संसद के केंद्रीय कक्ष में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ की शुरुआत देशव्यापी कार्यक्रमों के साथ हुई।
26 नवंबर को संविधान दिवस पर सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में होने वाले कार्यक्रमों की शानदार शुरुआत हुई। 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ। इसी दिन कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में 5 जन्य स्मारक का लोकार्पण हुआ। कुछ दिन पहले ही मैंने हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन MRO फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल के सेक्टर में भारत ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। पिछले ही हफ्ते भारत के स्पेस इकोसिस्टम को स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस ने नई उड़ान दी है। ये भारत की नई सोच, इनोवेशन और यूथ पावर का प्रतिबिंब बना है।
नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने 35 करोड़ 7 लाख टन अनाज के उत्पादन के साथ ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है, जो कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत का अनाज उत्पादन पिछले 10 वर्ष में 10 करोड़ टन बढ़ा है।
साथियों, कृषि क्षेत्र में भी देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। 357 मिलियन टन, 10 साल पहले की तुलना में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलना भारत के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि ये देश और देशवासियों की उपलब्धियां हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये महीना भारत के खेलों के लिहाज से बेहद सफल रहा है।
खेलों की दुनिया में भी भारत का परचम लहराया है। कुछ दिन पहले ही भारत को कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी का भी ऐलान हुआ। ये उपलब्धियां देश की है, देशवासियों की है और मन की बात देश के लोगों की ऐसी उपलब्धियों को, लोगों के सामूहिक प्रयासों को जन सामान्य के सामने लाने का एक बेहतरीन मंच है।
भारतीय नौसेना में INS माहे को शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत का सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है तो हर भारतीय को गर्व होता है। उन्होंने कहा कि INS माहे के स्वदेशी डिजाइन की व्यापक रूप से चर्चा हुई है।
INS माहे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कुछ लोगों के बीच इसके स्वदेशी डिजाइन को लेकर खूब चर्चा रही। वहीं पुडुचेरी और मालाबार कोस्ट के लोग इसके नाम से ही खुश हो गए। दरअसल इसका माहे नाम उस स्थान माहे के नाम पर रखा गया है जिसकी एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत रही है। इस युद्धपोत का क्रेश उरुमी और कलारिय पट्टू की पारंपरिक लचीली तलवार की तरह दिखाई पड़ता है। हमारी नौसेना बहुत ही तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
नरेंद्र मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देश के लाखों लोगों ने वोकल फॉर लोकल की भावना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है।
आने वाले कुछ दिन में क्रिसमस और नए वर्ष पर खरीदारी का नया दौर शुरू होने वाला है। मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद रखें। खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जिसमें किसी देशवासी की मेहनत लगी हो।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश के लोगों की उपलब्धियों का उत्सव मनाने और लोगों के सामूहिक प्रयासों को जनता के सामने लाने का उत्कृष्ट मंच है। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं रितेश कपूर।
प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार ने आज शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अपना पदभार संभाल लिया है। निवर्तमान पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने उन्हें औपचारिक रूप से नए प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और पार्टी पदाधिकारी व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समारोह में शामिल रहे। विनय कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे सरकार व संगठन के बीच तालमेल बनाने के लिए कड़ी के रूप में काम करेंगे और उनका लक्ष्य वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में रिपीट कराना रहेगा।
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे जो वर्कर है कांग्रेस पार्टी का, ये आवाज बनके मैं प्रदेश में घूमूंगा और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूत करके 2027 में फिर से रिपीट कराएंगे कांग्रेस। अभी एक साल से संगठन नहीं है, हमने पूरी कार्यकारिणी बनानी है, बूथ लेवल तक बनाना है, एक टास्क है मेरे लिए, मैं करूंगा इसको, पूरा करूंगा और सरकार और संगठन में एक कड़ी के रूप में काम करूंगा, सभी वर्करों के काम भी होंगे। चुनौतियों भरा ही है, ये सारा चुनौती ही है, अभी हमारे वर्कर है जो उसको बाहर निकालना है और पार्टी के लिए काम कराना है, सबसे बड़ी चुनौती ये है।
ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि 4 दिसंबर को पार्टी द्वारा धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा और रैली में 10,000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार 11 दिसंबर को अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी में जश्न मना रही है, लेकिन सरकार के पास जश्न मनाने लायक कोई उपलब्धि नहीं है।
4 दिसंबर धर्मशाला जोरावर सिंह स्टेडियम साक्ष्य बनेगा एक बहुत बड़े विशाल प्रदर्शन का। 3 साल का मिस गवर्नेंस व्यवस्था पतन का राज, सब प्रकार की व्यवस्था पतन। आज हिमाचल प्रदेश के जनमानस ने दुखी होकर ये मन बनाया है कि इस झूठ की भरी हुई सरकार को बदलने का निर्णय लिया और ये हुंकार भरी जाएगी सरकार को बदलने के लिए और इसकी शुरुआत होगी 4 दिसंबर। बेरोजगार युवकों के साथ जो धोखा किया और ये जो मित्र बनाने का एक नया इंतजाम किया है, कोई 4,000 का मित्र, कोई 5,000 का मित्र, इसके खिलाफ आवाज बुलंद हो।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से आज चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला के न्यायाधीश व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने मनमोहक वंदे मातरम गायन प्रस्तुत कर वातावरण को देशभक्ति से सराबोर किया। शिविर में लगभग 1,500 लोगों ने भाग लिया। न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर ने बताया कि समाज से नशे के खात्मे के लिए प्राधिकरण द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए संस्कार युक्त शिक्षा के साथ युवा वर्ग में दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करने की जरूरत पर बल दिया।
हमारी नशे में जो पीढ़ी डूब रही है उसके अंदर इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी, उसके अंदर बचपन से एक दृढ़ निश्चय पैदा करने वाली शिक्षा उसको देनी पड़ेगी और उस शिक्षा में संस्कार के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे भी लोग देखे जो संस्कार के कारण जरा भी नहीं फिसलते, चाहे वो रिश्वतखोरी हो चाहे नशा हो, लेकिन कोई सब कुछ होते हुए भी नशे में चला जाता है। तो मूल बात यही आती है, संस्कार युक्त शिक्षा देने से ही अगली पीढ़ी जो है वो सशक्त रूप से नशे का प्रतिरोध कर सकेगी।
विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि शिमला की पेयजल और सीवरेज परियोजना से जुड़ी वित्तीय गड़बड़ियां चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है और इस परियोजना के लिए 587 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं, लेकिन कंपनी के पास अभी तक मात्र 250 करोड़ रुपए ही पहुंचे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि बैंक द्वारा सरकार को भेजा गया पैसा कहां गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के रवैये से ये परियोजना प्रभावित हो रही है और शिमला वासियों को 24 घंटे पानी की सुविधा देने में सरकार आनाकानी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विश्व बैंक से बजट जारी होने के बाद भी कंपनी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर इस परियोजना पर पड़ा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज बिलासपुर जिला के कपाहड़ा स्कूल में 1,58,00,000 रूपये से बने विज्ञान भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने क्लस्टर स्तरीय वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मेधावी बच्चों को पुरस्कार भी बांटे। समारोह में 11 स्कूलों के लगभग 1,200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। राजेश धर्माणी ने बताया कि कपाहड़ा स्कूल को सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध करने का निर्णय लिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान हो सके। उन्होंने कहा कि बच्चों को मंच पर बोलने के अधिक अवसर मिलने चाहिए ताकि उनकी प्रतिभा निखर सके। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई है। पार्टी के राज्य सचिव मंडल की आज शिमला में एक बैठक हुई जिसमें अनेक ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। पार्टी के राज्य सचिव संजय चौहान ने कहा कि राज्य पर 1,00,000 करोड़ रूपये से अधिक का कर्ज हो गया है और कांग्रेस सरकार नव उदारवादी नीतियों को लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और कृषि का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। संजय चौहान ने कहा कि राज्य सरकार जॉब ट्रेनी की नीति के तहत वन मित्र, रोगी मित्र और पशु मित्र जैसी भर्ती को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि इनके लिए न तो न्यूनतम वेतन देने और न ही इनकी सेवाओं को नियमित करने का कोई प्रावधान किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 10 वर्षों में भारत का अनाज उत्पादन 10 करोड़ टन बढ़ा। मन की बात कार्यक्रम में लोगों से वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाने का किया आह्वान। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार ने संभाला पदभार। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में रिपीट करने को बताया प्राथमिकता। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा धर्मशाला में 4 दिसम्बर को होगा प्रदर्शन, राज्य सरकार की नाकामियों को करेंगे उजागर। और चंबा के चौगान मैदान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने नशे के खात्मे के लिए संस्कार युक्त शिक्षा पर दिया बल। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।